समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार मनोज, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein we bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 24th of January. So let's begin with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi will meet NCC cadets, NSS volunteers, youth exchange program cadets, tableau artists and tribal guests of Republic Day celebrations 2025 in New Delhi today. A program has been organized at the Prime Minister's residence, 7 Lok Kalyan Marg, where Mr. Modi will interact with the tableau artists who work behind the curtains, as well as the NCC cadets who will participate in the Republic Day Parade this year. Republic Day Parade 2025 will be a unique blend of India's cultural diversity and military prowess, with special focus on 75 years of enactment of the Constitution and Jan Bhagidari. This year, 31 tableaus from various states, union territories and central government ministries, departments will participate, showcasing the theme Swarnim Bharat, Virasat or Vikas. Two tableaus will showcase the 75 years of Constitution of India. Other important highlights are 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, Sardar Vallabhbhai Patel and India Meteorological Department. Republic Day Parade will be heralded by 300 cultural artists playing Sare Jahan Se Achha musical instruments of different parts of the country.
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई है कि भारत का विकास दर 6-8% के बीच रहेगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अधिकांश प्रमुख सेमीकंडक्टर उद्योग का मानना है कि भारत आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में शीर्ष 3 गंतव्यों में शामिल हो जाएगा। श्री वैष्णव ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में कहा कि कई विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि भारत को एआई के लिए उपयोग की पूंजी बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत आईटी सेवाओं की तरह एआई सेवाओं में भी नेतृत्व कर सकता है। भारत को निवेश के लिए सही जगह बताते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दुनिया आज भारत पर भरोसा करती है और यही कारण है कि लोग केवल अपनी आपूर्ति श्रृंखला बल्कि मूल्य श्रृंखला भी भारत में स्थानांतरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने देश के प्रति विश्व का विश्वास बढ़ाया है। व्यापार शुल्कों को कम करने के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि शुल्कों का सरलीकरण सरकार के प्रमुख एजेंडे में से एक है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरलीकरण और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, जिससे उद्योग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मदद मिली है।
वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर विल विजिट बिहार टुडे। द वाइस प्रेसिडेंट विल अटेंड अ फंक्शन एट समस्तीपुर इन बिहार ऑन द ओकेजन ऑफ 101st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। द बर्थ एनिवर्सरी फंक्शन हैज बीन ऑर्गेनाइज एट कर्पूरी ग्राम, in which several dignitaries including Governor of Bihar Arif Muhammad Khan, Chief Minister Nitish Kumar, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan, Union Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai will also remain present. Union Minister for State for Agriculture Bhagirath Chaudhary, Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary and Vijay Kumar Sinha will also grace the occasion.
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारिता वित्त और विकास निगम के कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि दृष्टिकोण के अनुरूप सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी कई पहलों की शुरुआत भी करेंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का वार्षिक कैलेंडर भी जारी करेंगे। श्री शाह देश में 10,000 नवगठित समितियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्राथमिक सहकारिता समितियों के लिए रैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। सरकार ने इस निगम की स्थापना शहरी सहकारिता बैंकों की कारोबारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए की है। इससे लगभग 1,500 शहरी सहकारिता बैंकों को जरूरी सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा उपलब्ध होगी। रिजर्व बैंक ने निगम को पंजीकरण की तारीख 8 फरवरी 2025 से अधिकतम एक वर्ष के भीतर पेडअप पूंजी हासिल करने के निर्देश दिए हैं।
US President Donald Trump has offered business leaders low taxes if they manufacture their products in the United States. Addressing the annual meeting of the World Economic Forum through video conferencing, Mr. Trump also threatened the businesses with tariffs if they don't manufacture in US. Mr. Trump further said that he is going to ask Saudi Arabia and Organization of the Petroleum Exporting Countries to bring down oil prices, which will immediately end the Russia-Ukraine war. US President also called upon NATO nations to increase their defense spending to 5% of GDP, emphasizing that the United States has been shouldering an unfair burden in global defense spending, particularly in the Ukraine war. US President also spoke about the ceasefire negotiations in the West Asia. Mr. Trump also underlined the immediate changes he has implemented in American domestic and international policies since assuming his second term as President of the United States. During his address, President Trump stated that he would urge NATO countries to increase their defense spending.
विभाग ने कहा है कि आज हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रात के समय धुंध छाई रह सकती है। इस बीच पूर्वी राजस्थान, गांगेय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में कुछ इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। दिल्ली में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतर क्षेत्रों में तड़के कोहरा छाये रहने की संभावना है।
R. N. Ravi has given assent to the Tamil Nadu prohibition of harassment of women. The Act brought different types of harassment inflicted on women, including those through digital and electronic means, within the ambit of the legislation. Punishment for harassment of women includes imprisonment up to 5 years and a minimum penalty of 2 lakh or with death.
अब खबरें महाकुंभ की। महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चल रहे महाकुंभ के दौरान अब तक 10 करोड़ और 21 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इस महीने की 13 तारीख से शुरू हुआ 45 दिवसीय महाकुंभ 26 फरवरी तक जारी रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
महाकुंभ 2025 भारत की भव्यता और आध्यात्मिक जीवंतता का प्रमाण है। इसके आयोजन के लिए अत्याधुनिक तकनीक और सतत योजना के साथ वृहद तैयारी की गई। महाकुंभ का यह संस्करण त्रिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में एक मानक भी स्थापित करता है। अमृत स्नान से लेकर अखाड़ों की शोभा यात्रा और डिजिटल नवाचारों से लेकर बड़े पैमाने पर किए गए पहलों तक यह महाकुंभ अतीत और भविष्य के बीच सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हां, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
अब महानगरों के समाचार। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नमो भारत के साहिबाबाद और गाजियाबाद स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्मार्ट लॉकर की सुविधा शुरू की गई है। इन लॉकर्स में यात्री अपना सामान रखने के साथ ही ई कॉमर्स पार्सल मंगवा सकते हैं। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ने बताया कि स्टेशनों पर लोग अपनी जरूरत के अनुसार स्मार्ट लॉकर में स्मॉल, मीडियम और लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज लेकर लॉकर ले सकते हैं। इसकी सुविधा का लाभ यात्री प्रति घंटा की दर पर उठा सकते हैं। लॉकर के शुल्क का भुगतान UPI के जरिए किया जा सकता है। इसे बुक करने की सुविधा नमो भारत कनेक्ट ऐप पर भी उपलब्ध है, जिसमें रेंट अ लॉकर का ऑप्शन दिया जाएगा। RTS ने बताया कि जल्द ही नमो भारत के अन्य ऑपरेशनल स्टेशनों जैसे DPS राजनगर, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ और मेरठ साउथ पर भी स्मार्ट लॉकर की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही दिल्ली के आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशनों पर भी ये सुविधा जल्द ही उपलब्ध होगी।
Karnataka Governor Thavarchand Gehlot highlighted the significance of sport, saying that it helps in shaping a positive attitude and fosters unity among individuals. He was speaking at the valedictory of the state games organized by the Karnataka Olympic Association in Udupi in coastal Karnataka. The governor noted that sports activities promote teamwork and instill values of discipline, unity and equality. It improves mental health, reduces stress and enhances cognitive functions like concentration and decision making. Praising the noteworthy efforts of the Sports Authority of India, the governor said that the Khelo India campaign has helped identify young talents and drawn the attention of our youngsters towards sports. Karnataka Energy Minister K.J. George has announced in Bidar in North Karnataka that 3,000 linemen will be recruited by the end of April to strengthen the workforce and ensure a more reliable electricity supply throughout Karnataka. He was speaking at the Bidar Zila Panchayat office yesterday in a meeting to review the energy department works. The minister issued instructions to officials to respond to complaints on power breakage, repairs and replacement of transformers, power lines and poles faults, and resolve the problems immediately.
बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC के आयुक्त और प्रशासक श्री भूषण गगरानी ने गोरेगांव पश्चिम में सिद्धार्थ नगर म्यूनिसिपल जनरल अस्पताल के पुनर्विकास स्थल का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अस्पताल की चिकित्सा सेवाएं चरणों में शुरू करने के निर्देश दिए। अस्पताल भवन का निर्माण चौथी मंजिल तक पूरा हो चुका है। श्री गगरानी ने संबंधित अधिकारियों को शेष निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने और उसमें तेजी लाने का भी निर्देश दिया। सिद्धार्थ नगर म्यूनिसिपल जनरल अस्पताल भवन में 306 अस्पताल बेड होंगे और 11 मंजिला संरचना में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। लगभग 48,588 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्य अस्पताल भवन के अलावा पोस्टमार्टम केंद्र, डॉक्टरों के लिए आवासीय भवन और स्टाफ क्वार्टर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। भवन निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कार्य जारी है। परियोजना के 36 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।
तेलंगाना स्टेट हैज सिक्योर्ड मेजर इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 11,78,000 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट डावोस। Agreements with 16 prominent companies are said to create over 47,000 jobs, driving growth across key sectors like renewable energy, technology, manufacturing and healthcare. An official release stated that the state's investor-friendly policies and strategic infrastructure have been instrumental in attracting these commitments. The state government claimed that these investments reflect its robust policies, world-class infrastructure and investor-friendly governance and cement its position as a hub for innovation, sustainable energy and technology-driven growth.
अब पश्चिम बंगाल कोलकाता की खबर। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को द्वारे सरकार अभियान शुरू होगा। ये अभियान पहली फरवरी तक जारी रहेगा। द्वारे सरकार पश्चिम बंगाल सरकार का एक सेवा वितरण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉकों और नगर पालिकाओं में विभिन्न सरकारी विभाग एक स्थान पर एक साथ शिविर लगाते हैं। इन शिविरों में लोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। सरकारी अधिकारी इन शिविरों में उपस्थित रहते हैं। ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। राज्य सरकार ने सभी विभागों को सभी आवेदन पूरे करने के निर्देश दिए हैं। ये आवेदन 28 फरवरी तक द्वारे सरकार अभियान में जमा किए जाएंगे।
एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द स्पोर्ट्स न्यूज। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ वर्ल्ड पिकलबॉल लीग WPBL विल किक ऑफ टुडे एट द CCI इन मुंबई महाराष्ट्र। वी हैव मोर अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
The 10-day-long franchise-based pickleball league will feature a total of 6 teams. The opening match of the league will be played between Mumbai Pickle Power and Pune United, showing a clash of Maharashtrian derby, followed by another match between Bengaluru Javans and Chennai Super Champs. Moving on to Tata Steel Chess Tournament, where round 6 will begin today at the Wisg Aan Zee in Netherlands. Indian chess stars including Arjun Erigesi, D. Gukesh and R. Pragananda will be in action. Currently, India grabs 3 spots in top 5 standings, with R. Pragananda sealing the top spot. Next, we have from Indian Super League ISL Football, where Hyderabad FC defeated Jamshedpur FC by 3-2 on their home ground last night. With this, Hyderabad registered their first home win of the season. Today, East Bengal FC will host Kerala Blasters FC in Kolkata this evening at 7:30 PM. Moving on to the world of cricket, in the Big Bash League T20, Moises Hendricks-led Sydney Sixers will play against David Warner-led Sydney Thunder in the crucial challenger match today. The winner of this match will face Hobart Hurricanes in the final match of the league on 27th of this month at Hobart. And in senior men's cricket, the second T20I match between India and England will be played tomorrow at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai. The Surya Kumar Yadav led Indian side are leading the 5-match series 1-0. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
And now news from Hockey India League.
On Thursday in Ranchi in the Women's Hockey India League, Wooden Spooners Delhi SG Pipers caused a surprise by toppling high-flying Odisha Warriors 3-2 in the shootout after regulation time ended 1-1. Both keepers did brilliantly in the shootout, but Delhi's Elodie Picard had the last laugh by putting off Frike Moyes and making her miss deep into the shootout to help her side claim the bonus point. The Tamil Nadu Dragons also won a thriller via a shootout against the Hyderabad Tufans in the men's league game at Rourkela. This game also hurtled into a shootout, and the Dragons keeper Hart, who had an excellent game, was at his imperious best here too, helping his side to a 4-3 win.
David Hart bachayenge! Tamil Nadu Dragons jeet kar jayenge!
Tamil Nadu are on top with 17 points, while Hyderabad are third with 14. On Friday in the women's league, the JSW Surma Hockey Club face the Shrachi Rar Bengal Tigers with all to play for, while the Bengal men's team will face the Vedanta Kalinga Lancers in another crucial battle. This is Sharia Chaudhary for Akashwani News.
और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय मध्यम कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता में सुबह के समय मध्यम कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के मौसम का हाल जानते हैं अनिता आनंद से।
Chennai is expected to have fog and mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have mist. The minimum temperature was 15 degrees and the maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 17 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 24 जनवरी है। आज ही के दिन 1857 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।
इन द ईयर 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड टू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जन गण मन वॉज एक्सेप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ द कंट्री।
आज ही के दिन 1951 में प्रेम माथुर भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी।
इन 1952 द फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन मुंबई। This event had a great impact on the Indian cinema.
आज ही के दिन 2001 में जैव सुरक्षा संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए और जोसेफ काबिला के कांगो के राष्ट्रपति बनने पर संसद की मंजूरी मिली.
In the year 19, we are going back a little. 1957, Kagaz Ke Phool, the first Indian black and white cinema score film was made. And in the year 1976, Verma Shell, a private oil company, was nationalized and renamed as Bharat Refineries.
आज ही के दिन 2002 में भारतीय उपग्रह इनसेट 3C सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया गया.
And now we remember people who were either born this day or who passed away today. We are beginning this segment with Sir Winston Leonard Spencer Churchill, who passed away today in 1965. He was the British statesman, military officer and writer who was the Prime Minister of the United Kingdom from 1940 to 1945 during the Second World War and also again from 1951 to 1955. Apart from 1922 to 1924, he was a Member of Parliament from 1900 to 1964 and represented a total of 5 constituencies. Ideologically an adherent to economic liberalism and imperialism, he was for most of his career a member of the Conservative Party, which he led between 1940 and 1955.
आज पुण्यतिथि है होमी जहांगीर भाभा की. इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था. आप भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी. जब होमी जहांगीर भाभा 29 वर्ष के थे और उपलब्धियों से भरे 13 वर्ष इंग्लैंड में बिता चुके थे, उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था. वहां पर श्री भाभा केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि कार्य भी करने लगे थे. जब अनुसंधान के क्षेत्र में श्री भाभा की उपलब्धियों भरे वर्ष थे, तभी स्वदेश लौटने का अवसर उन्हें मिला. श्री भाभा ने अपने वतन भारत में रहकर ही कार्य करने का निर्णय लिया. उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था.
Humi Bhabha was the first chairman of the Indian Atomic Energy Commission and secretary of the Department of Atomic Energy. By supporting space science projects, which he initially derived their funding from the AAC, he played an important role in the birth of the Indian space program. And like Manoj mentioned, he got the Padma Bhushan in 1954 and he was awarded the Adams Prize in 1942 and nominated for the Nobel Prize for Physics in 1951 and 1953 and 56.
आज पुण्यतिथि है पंडित भीमसेन जोशी की. इनका जन्म 4 फरवरी 1922 को गडक कर्नाटक में हुआ था. आप किराना घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे. उन्होंने 19 साल की उम्र से गायन शुरू किया था और वे 7 दशकों तक शास्त्रीय गायन करते रहे. भीमसेन जोशी ने कर्नाटक को गौरवान्वित किया है. उनकी योग्यता का आधार उनकी महान संगीत साधना है. देश विदेश में लोकप्रिय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायकों में उनकी गिनती होती थी. अपने एकल गायन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक नए युग का सूत्रपात करने वाले पंडित भीमसेन जोशी कला और संस्कृति की दुनिया के छठे व्यक्ति थे जिन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था.
He is known for the khayal form of singing as well as for his popular renditions of devotional music, that is bhajans and abhangs, noted for his concerts. And between 1964 and 82, Joshi toured Afghanistan, Italy, France, Canada and US. He was the first musician from India whose concerts were advertised through posters in New York. Joshi was instrumental in organizing the Savai Gandharva Music Festival annually as homage to his guru, Savai Gandharva. In 1998, he was awarded the Sangeet Natak Academy Fellowship, the highest honor conferred by the Academy, India's National Academy for Music, Dance and Drama. Subsequently, he received the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, in 2009. Joshi was widely recognized in India due to his performance in Mile Sur Mera Tumhara music video, which was released in 1988. Let's listen to a snippet from that.
Oh,
And today is the birth anniversary of J. Om Prakash, born on this day in 1926, was the Indian Bollywood producer as well as director. He directed films like Aapki Kasam, Akraman, Aashiqun Baharon Ka Aakhir Kyun, which was released in 1985 with Rajesh Khanna as the lead hero, and other successful directorial ventures include Apna Pan, Asha, Apna Banolo. I am playing a song from the film Aapki Kasam, which was his directorial debut, also with Rajesh Khanna and Mumtaz.
आज जयंती है क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास की। आप महान स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की व अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय उनके सम्मान में विशेष पदक देता है, जिसका नाम पुलिन बिहारी दास स्मृति पदक है। और आज जन्म दिवस है निर्माता निर्देशक सुभाष घई का। हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त निर्माता निर्देशक हैं सुभाष घई। बॉलीवुड में सुभाष घई को एक ऐसे फिल्मकार के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए राज कपूर के बाद दूसरे शोमैन के रूप में दर्शकों के दिलों पर खास पहचान बनाई है। हिंदी फिल्में कालीचरण, विश्वनाथ, कर्ज, विधाता, कर्मा, हीरो, सौदागर, रामलखन, ताल, खलनायक, परदेश और ऐतराज आदि अपनी सफलता की कहानी स्वयं कहती है।
In 1982, Ghai founded Mukta Arts, which became a public company in 2000, with Ghai serving as its executive chairman. In 2006, he received the National Film Award for Best Film on Other Social Issues for producing Iqbal, a film addressing social issues. In 2015, Ghai was honored with IFA Award for Outstanding Contribution to Indian Cinema. His films are noted for their iconic characters, grand sets, and dramatic climaxes, themes of divine justice and duty. Let's listen to a medley from his films.
बार बार तुमको हम सबका प्रणाम, तुम कितने बड़े हो, हाँ कितने महान,
हाँ कितने महान,
ये लोग भला क्या पहचाने, तुम जानो या हम जाने, ये
जानो तुम जानो या हम जाने,
जिंदा रहोगे तब तक समझ लेंगे साला, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं, भूलना चाहिए भी नहीं। मुझे खुशी है कि तुम्हें हिंदुस्तानी थप्पड़ का अंदाजा हो गया। ख्याल रहे ये सिर्फ एक हाथ था, बाकी तुम खुद काफी समझदार आदमी हो।
हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था।
काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है।
ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया,
ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया।
आज जन्म दिवस है कर्पूरी ठाकुर का। आपका जन्म समस्तीपुर बिहार में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर इतने सरल थे कि आम लोगों की फरियाद भी बड़ी तल्लीनता से सुनते थे। बहुत तल्लीन होकर प्रदेश का काम भी निपटाते थे, इसलिए उनको जननायक भी कहा जाता है। और अब समय है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।